हरे कृष्ण। ऐसा पूछ रहे लोग आपको, हरे कृष्णा। वो क्या है कि बादलों जैसे रंग का शिला मिलता नहीं है उसको। जो गोपीनाथ मंदिर में गोपीनाथ जी का विग्रह है ना, वो भी मार्बल ही, व्हाइट मार्बल था, उसको थोड़ा सा फिर टिंज दिया गया ब्लू कलर का, लेकिन ब्लू रंग का मार्बल नहीं मिलता है, इसलिए वो ब्लैक रंग का होता है। इसलिए वृंदावन में भी सब जगह पर जो बलराम जी की, कृष्ण की मूर्तियां हैं वो सब ब्लैक रंग की है। हाँ माता जी, हाँ, नीम का झाड़ वही है। उनका प्रश्न ये है कि वो योगपीठ में बाढ़ आकर जो पूरा कवर कर दिया ना भगवान ने गंगा जी से अंतरद्वीप को, तो बहुत सुंदर प्रश्न है इनका, इट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हाउ दैट ट्री रिमेन देयर ओनली, द सेम ट्री या न्यू ट्री? नहीं, वही सेम ट्री है, वो 500 साल पुराना। ऐसा है ना, ये बाढ़ वाड़ जो चीज़ है ये तो एक भगवान की लीला है, अपनी लीला को कवर करते हैं, फिर प्रकट करते हैं, फिर कवर करते हैं, लेकिन उसमें से क्या बचाना है और क्या गुम करना है वो भगवान की इच्छा से होता है। तो भगवान ने उस पेड़ को बचा के रखा ऐसे के ऐसे ही। और नीम का पेड़ जो है वो हजारों साल जीता है, 500 साल तो वो छोटे होते हैं, इसलिए ये भी विश्वास करना साइंटिफिकली भी मुमकिन है, क्योंकि नीम का पेड़ 500 साल तक जीवित रह सकता है। और कितना विशाल है वो, ऐसा नहीं कि छोटा सा पौधा है, इतना बड़ा उसका शाखा उसकी कितनी बड़ी है, खोड़ जो होता है कितना बड़ा है उसका, कितना बड़ा विस्तार है उसका, उससे आप समझ सकते हैं कि हाँ वाकई में ये पेड़ जो है इतने साल पुराना हो सकता है, है ना? हाँ किसकी
कैसे होना चाहिए,
क्या कैसे होना चाहिए, आप लोगों को कैसे होना चाहिए? हाँ, नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, सब भक्तों को आदर आदर देना चाहिए, सब भक्तों की सेवा करनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो हम लोग यात्रा में आते हैं ना, वो तो कथा तो होती रहती है, लेकिन साथ में जो हम आप देखते हो अपने आँख से, हाँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ, हमको एक्चुअली शर्म आनी चाहिए अपने आप की, कि हम लोग एक बार यात्रा में आए होंगे, दो बार आए होंगे, तीन बार आए होंगे, इस्कॉन मंदिर जाते होंगे और कई मंदिर जाते होंगे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो निश्चय नहीं है। वो जो निश्चय होना चाहिए ना भक्ति के लिए, वो भी हमारे अंदर उगम नहीं होता है उसका। और आप पश्चिम लोगों देशों के लोगों देखो, आपने देखा होगा ना कई औरतें और कई आदमी वहाँ पर देखे होंगे अपने भक्तों ने, भक्त बनकर वहाँ, वो घूमने के लिए वहाँ पर नहीं आए, वो परमानेंट वहाँ रहते हैं। बाय द वे, उनका परिवार भी वहाँ पर है, उनको नई नई शादी होकर भी आए और नए नए बच्चे भी उनको है। और देखा ना कितने बच्चे वहाँ पर, कोई दीपक चला रहा है, कोई पचामर कर रहा है, कोई अगरबत्ती घुमा रहा है, हाँ, और माता पिता उनको तिलक लगाकर, धोती कुर्ता पहनकर, साड़ी पहनकर कितना सुंदर बनाकर लेके आते हैं उनकर। अगर आपको बताया कि बॉम्बे छोड़कर, पालघर छोड़कर थोड़ा सा मायापुर में सेटल हो जाओ, तो आप कितना सोचोगे उसके बारे में, कैसे होगा, मायापुर का पानी, यहाँ का पानी, मायापुर की सुविधा, बम्बई की सुविधा होगी क्या अच्छी तरह से? हमको बम्बई इंडिया के वातावरण के होके भी कितना मन में कष्ट होगा कि शिफ्ट कैसे हो जाएंगे वहाँ पर, वृंदावन शिफ्ट होना है तो कितना हमको विचार लगेगा मन में, गर्मी सर्दी। वृंदावन में भी ऐसे हजारों वेस्टर्नर्स जो हैं वो फुल टाइम आकर शिफ्ट हो गए, और वो साल में एक महीना दो महीना अपने देश में जाते हैं, थोड़ा बहुत हमाली वगैरह करते हैं, इकट्ठा करते हैं पैसा और आकर वृंदावन में रहते हैं। कितना निश्चय होगा बताओ आप, वहाँ पर तो फुल टाइम ठंडी होती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बटन दबाओ तो सब कुछ चलता है, यहाँ पर लाइट ही रहती नहीं, बटन क्या दबाएंगे बटन दबाकर फायदा क्या है, लाइट ही नहीं है तो इस तरह से यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है वहाँ के मुकाबले, लेकिन फिर भी उनको ये हृदय में अनुभूति हो गई है, अरे ये सब जो हम जहाँ पर जी रहे हैं सब बेकार है, सब खोखला है, उसमें कुछ दम नहीं है, असली दम तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर तो सुविधा है नहीं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम तंग आ गए उससे सुविधाओं से, अभी हम कष्ट होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अगर सिंपल जीवन जियेंगे और भक्ति करेंगे भगवान की। आज देखा आपने, दो चाइनीज बच्चे वहाँ बैठे थे, कितना प्रेरणादायक दृश्य था वो, एक चाइनीज लड़की और छोटा भाई उसका चाइनीज, कितने सुंदर लग रहे थे। हाँ, तिलक लगाकर सर पे एक माला धारण करके, वो लड़की चाइनीज लड़की थी, वो पूरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे पूरा भजन गा रही थी कंप्लीट। चाइनीज है वो, चाइनीज वो बोलेंगे अपनी भाषा बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हो। लेकिन कितनी श्रद्धा है, इसका मतलब उसका जन्म ही उधर हुआ है दो बालकों का, इसका मतलब चाइनीज हरि बोल जो कपल है वो वहीं पर आकर बस गए, वहीं पर उनका विवाह हुआ है, वहीं पर घर है उनका, वहीं पर उनको नए बच्चे वहीं पर हुए हैं। धामवासी बालक है वो, शरीर चाइनीज दिखता होगा लेकिन धामवासी बालक है, आखिरी जन्म है उनका वो। तो हम लोग भारतीय है, हाँ भारतवर्ष में जन्म हुए, महाभाग्यवान जीव है हम लोग, लेकिन बंबई के और पश्चिमात्य लोगों के और देशों के भोगों की ओर हमारा मन आकर्षित हो चुका है। वैसे ही कपड़े हम पहनते हैं, वैसे ही बालों का स्टाइल रखते हैं, वैसे ही बात करने का प्रयास करते हैं, वहां की बातों से प्रभावित हो जाते हैं। हाँ, तो ये हमको देखने को मिलता है माया पुराने के बाद में, कितने लोग हैं ऐसे, हजारों लोग वहां पर, 700 कम से कम मैंने सुना था, बहुत पुरानी बात है ये, रिकॉर्ड ही पुराना है, कई हजार लोग वहां पर रहते हैं जो विदेश से आकर पूरा घर बार छोड़ के अपना बिजनेस छोड़ के वहां सेटल हो गए। खास करके जब मैं चाइना और रशिया के लोगों को देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वहां पर तो कितने हजारों साल तक कम्युनिस्ट का राज रहा, और चाइना में अभी भी कम्युनिस्ट का राज है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, चाइना में किसी भी धर्म की भक्ति करना अपराध है, इसलिए जो नरक बरक कहते ना हम लोग, यही नरक है जहां पर भक्ति का भक्ति करना ही अपराध है, वो और नरक से अलावा क्या हो सकता है। तो वहां पर ये लोग सबसे पहले, तो वो लोग नहीं, सबसे पहले जो भक्त बने हुए थे, बने हुए हैं अमेरिकन ब्रिटिश सन्यासी, वो शर्ट पैंट जीन्स और कैप पहनकर अपनी शेंडी को छुपाकर कैप के अंदर जाते हैं उस देश के अंदर, और कभी रात को अंधेरे में कभी किधर सत्संग करते हैं, और उनको भक्त बनाया उन्होंने। फिर भक्त बनने के बाद में उनको वृंदावन की कथा सुनाई, मायापुर की कथा सुनाई, फिर दिल ललचाया उनका, फिर हमको जाना है वहां पर, बोले हम ले जाएंगे आपको, फिर उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, फिर वो यहाँ पर आए। फिर कुछ लोग बोले हमको यहीं रहना है, तो बस गए उधर ही, बाकी लोग चले गए वापस, और अभी भी वहाँ पर अंडरग्राउंड भक्ति करते हैं। हाँ, एक एक भगवद गीता जो है हजार हजार लोग पढ़ते हैं, हमारे पास हजार गीता भी एक आदमी नहीं पढ़ता है। हजार गीता पढ़ेगा तो एक भी आदमी नहीं पढ़ता है उसको, तो एक गीता हजार लोग पढ़ते हैं, ये सोचो आप। हाँ, एक बात मेरे विशेष ध्यान में आया वो दिन, कि हमारे जो इंडियन लोग हैं वो अभी कम 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 कपड़े पहनने आरंभ कर दिया उन्होंने। हाँ, अभी कौन सा जीव ऐसा है जो कपड़े नहीं पहनता है बताओ, भगवान के निर्माण के अंदर सब जीव, मतलब कुत्ता बिल्ली पंछी, कोई उनका टेलर नहीं होता है, कोई कपड़े की फैक्ट्री भी नहीं होती भाई, ये कपड़े पंछियों की फैक्ट्री अलग, ये कुत्तों की अलग, घोड़ों की अलग, ऐसा नहीं होता है। उनके लिए भगवान ने कपड़ा नहीं बनाया, मतलब कपड़ा नहीं पहनकर घूमना ये किसका कल्चर है, जानवरों का, अलग योनियों का, और अपने शरीर को ढक के रखना ये किसका कल्चर है, मानव का, इंसान का। तो जब मानव अपने शरीर को ढकना कम 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 कर देता है और अधिक 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 शरीर को एक्सपोज करने लगता है, तो मानव क्या बन रहा है, जानवर बन रहा है। जस्ट इमेजिन दिस सिंपल। हाँ, जब हम अपने शरीर को कम कम कपड़े से ढकते हैं और अधिक अधिक शरीर एक्सपोज कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे जानवर की ही ओर जा रहे हैं। जब कपड़े को हम कम कम पहनते हैं तो अधिक शरीर दिखाई पड़ता है, जब अधिक शरीर दिखाई पड़ता है तो उसको देखने वाले मन के अंदर काम वासना जागृत हो जाती है। तो घर में अपनी पत्नी होने पर भी जो बाहर शरीर दिखता है उसके प्रति मन ललचता है, फिर व्यभिचार होता है, फिर व्यभिचार से और आगे बढ़ता है, फिर एक से मन संतुष्ट नहीं होता है, फिर दूसरे का शरीर देखते हैं तो उसके ओर आकर्षित हो जाते हैं, फिर रोज नया नया, फिर डेटिंग की कल्चर शुरू होती है कि आज इतवार के लिए ये औरत, फिर अगले इतवार के लिए वो औरत, फिर क्रिसमस के दिन और किसी और दिन और। हाँ, ये सब शुरू कहाँ से होता है, जब आदमी, सुसंस्कृत आदमी अपने कपड़े उतारने लगता है या कम कपड़े पहनने लगता है, तब ये संस्कृति आरंभ होती है। तो इसलिए अपने बच्चों को और अपनी लड़कियों को, लड़कों को और खुद को अच्छी तरह से कपड़े से ढक के रखिए, कम ढकते होंगे तो ज़्यादा ढकिए। हाँ, जैसे हमारी संस्कृति क्या है कि सारी औरतें बालों को बंद अच्छी तरह से बांध के कवर करती हैं, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। और आज की संस्कृति क्या है, जितने हो सके उतने बाले खुले रखो उसको। उससे क्या होता है, क्योंकि बाल जो लंबे होते हैं वो स्त्री के शरीर के लक्षण हैं, वो एक स्त्री के शरीर का एक आकर्षण है केवल पुरुषों के लिए। तो जब खुले हुए बाल दिखाई पड़ते हैं तो पुरुष के मन में अलग अलग विचार आते हैं, उस जगह अरे मेरी पत्नी के तो इतने लंबे बाल नहीं है, इसके कितने अच्छे बाल हैं। फिर उसके मन में कुछ वासना जागृत होगी, फिर वो कुछ करेगा, कुछ शरारत करेगा, कुछ करेगा, प्रपोजल देगा, कुछ ना कुछ करेगा, फिर व्यभिचार बढ़ेगा। शुरुआत बहुत, अभी क्या है, शुरुआत तो अभी खाली बाल छोड़ दिए, इतना ही शुरुआत है, उसका आगे का परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में ये देखेंगे ना, इतना पैसा है, इतनी सुविधा है, सब कुछ है, फिर भी क्या है, सबसे ज्यादा बलात्कार वहां पर होते हैं। और अब धीरे धीरे अभी क्या हुआ कि पहले तो कहते थे कि बहुत डिवोर्स हो रहे हैं, अचानक डिवोर्स का जो नंबर जो है वो पश्चिम जगत में एकदम कम हो गया है। पता है क्यों कम हो गया है? क्योंकि शादी नहीं करते वो लोग, शादी नहीं करते डिवोर्स कैसे होगा, शादी करने की जरूरत क्या है, लिव इन कंपेनियनशिप, साथ साथ में रहते हैं, उनको 10-10 साल के बच्चे भी हैं, फिर भी वो मैरिड नहीं है अभी भी, दे आर नॉट मैरिड। फिर कभी मूड आया 10 साल के बाद में तो बोले चलो शादी भी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनको चाहते हैं कि शादी कर उस बंधन में किसको फंसना है, फिर रजिस्टर करो, फिर डिवोर्स देंगे बाद में, फिर वो उनको पैसा दो, इसके अच्छे कंपेनियन रखना है, मन लगा साथ में तो रहेंगे, जिस दिन मन उड़ गया चले जाएंगे। जानवर लोग क्या करते हैं, ऐसे करते ना, आज एक मादी तो कल दूसरी मादी। तो ये सब भोग संस्कृति है, केवल शरीर को सर्वस्व मानकर केवल शरीर को और मन को संतुष्ट करने की संस्कृति को भोग संस्कृति कहते हैं, और उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं सब लोग, क्योंकि वो पश्चिम जगत में वही सब कल्चर है। जैसे मैंने बताया ना आपको प्रवचन में कि वहां पूछना नहीं किसी को, लड़के को या लड़की को, कि वेर इज योर हस्बैंड, वेर इज योर वाइफ, नेवर आस्क, बट दे डोंट नो देमसेल्फ हु इज देयर हस्बैंड, हु इज देयर वाइफ। ऑल द लेडीज हुम दे आर अट्रैक्टेड टू आर देयर वाइफ्स, व्हेनेवर दे वांट दे कैन डेट देम, इफ दे एग्री दे कैन गो ऑन डेट्स। तो इसलिए यहां पर हम लोग क्यों आते हैं, देखते हैं कि वो लोग जो सब भोग चुके हैं सब आनंद को, वो सब उसको त्याग करके यहां पर आकर भक्त बने हैं। हाँ, हम लोग क्या त्यागते हैं, जो हमारे शरीर में भोजन करते हैं और जो शरीर के लिए उचित नहीं होता है वो मलमूत्र के रूप में हम बाहर फेंक देते हैं, और जो सुअर होता है ना वो उसको खाता है, जो हमने खाकर चूस कर आनंद लेकर बाद में त्याग दिया है वो सुअर का भोजन है, जो हमारा त्याज्य है वो सुअर के लिए भोज्य है। हाँ, तो वैसे वेस्टर्न लोगों ने जो चूस कर आनंद लेकर जो त्याग दिया है उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, और वो लोग उसको त्याग कर हमारे देश में आकर भक्ति कर रहे हैं। जो एक्चुअली हमारा भोजन है, जो हम लोगों के लिए भोज्य है, वो छोड़ के हम लोग वो जो त्याग कर दिए हैं उसको भोजन कर रहे हैं। हाँ, मतलब सुअर संस्कृति पैदा हो रही है हमारे अंदर, वॉट इज रिजेक्टेड बाय देम इज एंजॉयड बाय अस। गांव में देखा आपने कभी सुअर जो होता है ना वो ऐसे बैठ के वेट करते रहता है कभी आदमी उठेगा, इमीजिएटली जंप्स एंड ईट्स फ्रेश, इज वेटिंग। तो वैसे हम लोग भारतीय लोग से वेट कर रहे हैं कि वो कब मिलेगा हमको जो वो त्याग रहे हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, हमारे मन में कुछ अनुभूति जागृत होनी चाहिए, क्या हमारा जन्म है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमसे अपेक्षित है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, हाँ, भारत भूमिते होइलो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक कोरी करो परोपकार। ये भारतीय लोगों से उनकी बहुत ऊंची अपेक्षा है, कहते हैं कि भारत भूमि में जिसका जन्म होता है कई जन्मों तक उसने पुण्य किया हुआ है, वही इस भूमि में भारतीय माता पिता के शरीर में जन्म ले सकता है, बड़ा भाग्यवान जीव है वो, जन्म से ही भाग्यवान है, उसका जन्म भारत भूमि में हुआ है। तो उनसे महाप्रभु क्या अपेक्षा करते हैं, जन्म सार्थक कोरी, पहले अपने जन्म को सार्थक करो भगवान की भक्ति में लगकर, फिर करो परोपकार, केवल वहां रुको मत, अपने जीवन का उद्धार करके दूसरों को बताओ। जारा देखो तारा कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा हो तारे यही देश, मेरे आज्ञा से आपके आसपास में जो लोग हैं उनका उद्धार करो, भगवान के रास्ते में उनको लगाओ। जन्म सार्थक करो करो परोपकार, ये हमसे अपेक्षा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जन्म सार्थक तो कर नहीं रहे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने जो चूस चूस कर फेंक दिया है उसको भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः पुनः चर्विता चर्विना नाम, वो चूस चूस के जो फेंक दिया है उसमें हम चूस रहे हैं, कुछ मिलता है क्या जूस उसके अंदर, उनको नहीं मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं हमको मिलेगा शायद, इसलिए चूस रहे हैं उसको। तो इसलिए यहां पर आकर मुझे हर बार भी, बहुत साल हो गए, 28 साल से मैं यहां पर आ रहा हूं, हर बार जब नए नए मैं वेस्टर्न को देखता हूं, चाइनीज देखता हूं, रशियन देखता हूं, जर्मन देखता हूं, अमेरिकन देखता हूं, मतलब कहां का जन्म इनका, कहां की संस्कृति, क्या क्या चल रहा है इनके जीवन में, क्या कल्चर है वहां पर। एक बार गया था मैं, दो तीन साल पहले दो बार गया था वहां, जाके देखा उनका क्या लाइफ है, ना घटिया लाइफ है। पैसा बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, सुविधा बहुत है, फैसिलिटी बहुत है, साफ सफाई बहुत है, एवरीथिंग इज सो फाइन, सो नाइस, सबसे एडवांस चीज वहां पर मिलती है, लेकिन लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। कोई संस्कृति नहीं है, कोई प्रेम नहीं है माता पिता के बीच में, कोई परिवार का यूनिट नहीं है, क्या क्या बताएं आपको, क्या क्या चलता है वहां पर, इतना गंदा वातावरण है। और वो लोग फिर प्रभुपाद जी के आंदोलन में, प्रभुपाद जाने के बाद में 25, 30, 35 साल हो गए, उसके बाद भी प्रभुपाद की किताब पढ़कर लोग भक्त बन रहे हैं, हरे कृष्णा मंदिर में आकर अपने जीवन को बदल रहे हैं, हृदय परिवर्तन कर रहे हैं, पूरा जीवन शैली, कपड़ा पहनने का शैली, बात करने का शैली, भोजन का शैली, रहन सहन की शैली, सब शैलियां बदल रहे हैं। हृदय में परिवर्तन हो गया तो बाह्य पूरा परिवर्तन उनका हो गया, उनका बाल रखने का स्टाइल, उनका कपड़े पहनने का स्टाइल, उनका जप करने का, बोलने का, खाने का, उठने का, बैठने का, सारा स्टाइल परिवर्तन हो गया। अभी वो औरतें बाल छोड़कर नहीं घूमती हैं, अभी वो बाल को बांधकर उनका पुल्ला पल्लू लेकर मांग में सिंदूर भरकर भगवान के सामने आते हैं मंगल आरती में। कितना बड़ा परिवर्तन है सोचो आप, कितना मन की तैयारी लगती होगी उसके लिए, एक कल्चर को बदली करना कितना डिफिकल्ट है, जस्ट सोचो आप। हमको पैंट से धोती पहनने में कितना टाइम लगा, पहले धोती तो पकड़ना कैसे, उसको रखना कैसे जगह पर, ये भी समस्या थी हमारी। फिर हमने, किसी ने हमको गांठ मारना सिखाया कि भाई गांठ मारोगे ना तो वैसे ही रहेगी, छूट जाएगी तो भी नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर ही रहेगी। तो गांठ मारना सीखा, फिर उसको कैसे प्लेट बनाना है, उसका कैसे आगे पीछे रखना है। हाँ, कई हमारे भक्त लोग हैं भाई, भी धोती पहनते नहीं, डर के मारे भाई नाचते हुए छूट गई तो। हमारे सन्यासी थे भक्ति तीर्थ महाराज, बड़े अद्भुत सन्यासी थे वो, अभी नहीं रहे बेचारे। उनका सन्यास जब हुआ ना, घनश्याम दास थे पहले, साउथ अफ्रीकन अमेरिकन, अमेरिकन थे लेकिन अफ्रीकन ओरिजिन था उनका, काले रंग के थे, बहुत बड़े विद्वान थे और येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया डिग्री प्राप्त किया था, वर्ल्ड के फेमस यूनिवर्सिटी से। तो उनका सन्यास जब हुआ तो इतने प्रेमी भक्त थे वो, इतने प्रेमी भक्त थे कि सन्यास का जब धोती उन्होंने बांधा और सन्यास लिया, उस बाद में कीर्तन शुरू हुआ तो इतना लंबा लंबा कूदने लगे कि बहुत बार कूदे, बहुत बार कूदे, बहुत बार कूदे, सब लोग पागल हो गए उनके आसपास, इतने नाच करने लगे। तो एक बार बीच में कूदे तो वो ऊपर कूदे और धोती नीचे गिर गई, वो इतने भाव में आ गए थे वो। हाँ, इमेजिन कि काले रंग का अफ्रीकन जंगली कल्चर से जन्म जिसका हुआ है, लेकिन आज वो इतना परम सन्यासी पद पर पहुंच गए, आनंद विभोर हो रहे। महाप्रभु चैतन्य के समय पर जो आनंद लोगों का अनुभव करते थे, वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन के आंदोलन में, रास लीला का जो अनुभव प्राप्त हो रहा था उसको अनुभव कर रहे हैं, पागल हो रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं। इतना प्रेम, इतना परिवर्तन इनके हृदय में हो सकता है। रोज वो 42 माला करते थे, एवरी सिंगल डे, जब से भक्त बने तब थे। इतना भयंकर कैंसर उनको हुआ, इतनी भयंकर अवस्था उनकी हुई, तभी भी उन्होंने 42 राउंड्स करना छोड़ नहीं दिया। अगर वो उस समय एक भी माला नहीं करते ना, लोग बोलते बस अपने जीवन पर बहुत जप किया, अभी आप थोड़ा शरीर को भी देखो, लेकिन उस अवस्था में भी 42 माला रोज करते थे। ऐसे कई मेरे पास हजारों उदाहरण है, आपको दे सकता हूं। सारांश इतना इतना ही है कि जिनका ये कल्चर नहीं है, उन्होंने हृदय तक इस कल्चर को स्वीकार किया है, और हमारा जन्म से ये कल्चर है, फिर भी हमको इतनी मुश्किल है उसको अपनाने के लिए। हाँ, सो डिफिकल्ट इट इज। अरे चाय छोड़ना मतलब बाप रे, चाय नहीं पियेंगे तो मरेंगे क्या, ऐसे बोलते घर में, पंजाबी हो या हिंदू हो, गुजराती हो या साउथ इंडियन हो, चाय नहीं पियेंगे तो मर जाओगे क्या, ऐसे पूछते। चाय के प्रति इतनी आसक्ति है। हाँ, तम्बाकू, भारत भर में सब लोग तम्बाकू लगे हुए हैं, ताली बजा रहे हैं। हम लोग ताली बजाते हरे कृष्णा में, ये तम्बाकू ताली बजाती है, फिर रखते हैं मुंह के अंदर, फिर कुछ दिन बाद मुंह टेढ़ा हो जाता है, फिर ऑपरेशन करते हैं, फिर और टेढ़ा हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर सकते उसके बाद में, है ना। ये तो बीड़ी फूकते हैं, छाती का कैंसर होता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी फूकते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है, सब ब्रिटिश लोगों ने हम पर लाद दिया हुआ कल्चर है। ये ब्रिटिश लोगों ने हमारी संस्कृति को ऐसा हरण किया है, मानो जो कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति था उसको पूरा नंगा कर दिया उन्होंने, संस्कृति से हीन कर दिया, पूरा सब कुछ छीन लिया हमारा। और 150 साल में जो ब्रिटिश लोगों ने नहीं छीन सके, वो जो भी छीना जो बच गया, वो केवल 15-20 साल में अमेरिकन लोगों ने छीन लिया। क्या करके? आपके घर घर में टीवी को पहुंचा के। रोटी नहीं होगी आपके घर पे, आपके बच्चे पढ़ते नहीं होंगे शायद, लेकिन टीवी और एंटीना जरूर है आपके घर पे, जीवनावश्यक वस्तुएं है ना। आजकल गवर्नमेंट में कैसा हो गया है कि एजुकेशन लोन नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है उसको प्राप्त करना, लेकिन टीवी चाहिए आपको, मोबाइल चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तुरंत लोन मिलेगा आपको। रोटी मत खाओ, मोबाइल कंप्यूटर खाओ, पेट भरो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम पश्चिमात्य संस्कृति को अपनाने में बहुत अपने आप को प्राउड समझते हैं, बहुत गर्व करते हैं। आई एम लाइक वेस्टर्नर, उनके जैसा बोलना, चाल ढाल, उनके जैसा कपड़ा पहनना, उनके जैसे स्टाइल में बोलना, हमको लगता है कि हम बहुत प्रगति कर रहे हैं उसकी। हमारी जरूरत यह है कि हमारे ही धन को हम पहचाने और उस धन को अपनाएं और उस धन से अपने जीवन को धन्य करें। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी अपेक्षा है। आई थिंक इतना काफी है ना। नहीं, हमको ये विचार बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। आप सोच सकते हैं अद्वैताचार्य इतने बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति गंगा किनारे बैठकर रोए, वो रो रो कर गर्जना करते हुए उन्होंने भगवान को पुकारा। क्यों पुकारा? कि यहीं के लोग, यहीं के ब्राह्मण और यहीं के संस्कृति वाले लोग, नवद्वीपवासी, धामवासी, भारतवासी इतने पतित हो चुके थे अपने धर्म को, संस्कार को भूलकर, उनको वो कृपा दोबारा प्राप्त हो जाए इसलिए वो रोए थे। अपने आप में बड़े श्रेष्ठ भक्त थे वो, कोई जरूरत नहीं उनको और कुछ करने की। लेकिन हम जैसे पापी लोगों को देखकर उनको दया आती थी कि कैसे इनको उद्धार करें। उन लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि भगवान आप स्वयं आ जाओ, भगवान को धरती पर अवतरित कराया उन्होंने। क्या उद्देश्य था उनका? कि हम सब लोग भारतवर्ष के इस संस्कार को, संस्कृति को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य करके इसी जीवन के अंत में भगवत धाम चले जाएं। ये देने के लिए, धन देने के लिए उन्होंने इतना तपस्या किया था। कम से कम ऐसे लोगों के प्रति हमको कम से कम थोड़ा धन्यवाद की भावना होनी चाहिए, ऋणी भावना, हाँ, ग्रेटफुल, कृतज्ञ भावना होनी चाहिए। तो अद्वैताचार्य से आप धन्यवाद कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम आपको वादा करते हैं, आपके भूमि में बैठे हुए हैं, आपके आपके स्थान में, घर में बैठे हुए हैं, आपने कृपा करके महाप्रभु को आह्वान किया था, वो आए, अवतार लीला किया उन्होंने, हम आपकी बात को मानेंगे और आपके मेहनत को व्यर्थ नहीं होने देंगे। हाँ, आपने जो आश्रु बहाए गंगा किनारे बैठकर, जो चंदन बहाया और चंदन और तुलसी का 40 ग्राम को अर्पण किया, वो हम वेस्ट नहीं होने देंगे। वादा करते हैं कि हम भक्त बनेंगे, चाहे शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। बाकी सारी कृपा करना आपके हाथ में है, आप कृपा कीजिए और शुद्ध भक्ति बना दीजिए, हम आपका भगवान के नाम का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।